पाठ 30:31-32। उत्पत्ति 31 में हमने देखा कि याकूब और उसके ससुर लाबान के बीच चीजें खराब हो गई थीं, यहां तक कि लाबान की दो बेटियां लिया और राहेल जो याकूब की पत्नियां थीं, उन्हें लगा कि उनके पिता ने उन पर भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने उस पर यह भी आरोप लगाया कि उसने एक खुशहाल पिता की तरह उन्हें याकूब से शादी नहीं की, बल्कि उन्हें बेच दिया जैसे कि वे गुलाम थे। और उन्होंने मान लिया, निस्संदेह सही, कि उनके पिता का यह देखने का कोई इरादा नहीं था कि परिवार की संपत्ति का कोई भी हिस्सा कभी उनका हो जाए। परिणाम स्वरूप राहेल ने उनके पिता से पारिवारिक देवताओं को चुरा लिया और उन्हें अपने साथ ले गई, क्योंकि जब लाबान कुछ भेड़ें चरा रहा था तो याकूब और उसका परिवार दूर चले गए। उस दिन की प्रथा थी कि जिस परिवार के सदस्य के पास भौतिक रूप से वे छोटी देव मूर्तियां होती थीं, वह परिवार की संपत्ति और शक्ति का उत्तराधिकारी होता था। याकूब को पता नहीं था कि राहेल ने यह काम किया है। याकूब और उसका परिवार आजादी के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन लाबान को जल्द ही पता चल जाता है कि वे चले गए हैं और उसका पीछा करने के लिए एक दल तैयार करता है। उनकी खोज के दौरान ईश्वर एक सपने में लाबान के पास आते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वह याकूब से न तो अच्छा बोलें और न ही बुरा। इसका सीधा मतलब यह है कि लाबान को याकूब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन यह कुछ दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। ईश्वर अविश्वासियों से बात करता है। यह पहली बार नहीं है जब हमने यहोवा को अन्य जातियों से बात करते देखा है, और यह आखिरी भी नहीं होगा। लाबान अध्यात्मवादी था, उसने अनेक देवताओं को स्वीकार किया, इसलिए यह स्वीकार करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि याकूब का ईश्वर बिल्कुल वास्तविक था। याकूब का ईश्वर प्रतीत होता है कि असीमित संख्या में देवताओं में से एक था। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यहोवा केवल उनके साथ बातचीत करता है, विश्वासियों के साथ बातचीत करता है। वह जिससे चाहेगा उसे संवाद करेगा और उसका उपयोग करेगा। आखिरकार धर्म ग्रंथ उस समय के बारे में भी बताते हैं जब उन्होंने गधे के माध्यम से बात की थी। साथ ही हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि ईश्वर ने किसी से बात की है, यह एक संकेत है कि वह व्यक्ति आस्तिक है। लाबान को याकूब से बात करते समय याकूब के नाम का आह्वान करना पसंद था, लेकिन इसलिए नहीं कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का सम्मान करता था या झुकता था उसे। उसने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए याकूब या यहोवा को प्रभावित करने की आशा से ऐसा किया। लाबान और उसके लोग कनान के उत्तरी भाग में गिलियड नामक क्षेत्र में याकूब तक पहुंच गए, जो किसी दिन गाद का होगा, जो याकूब के पुत्रों में से एक था। लाबान एक अच्छे झूठ के लिए कभी नुकसान में नहीं रहता, याकूब को गुप्त रूप से जाने के लिए डांटता है। इस प्रकार लाबान को उसे विदाई पार्टी देने और अपनी बेटियों और पोते पोतियों को उचित अलविदा देने की अनुमति नहीं देता है। हां, सही है। और निसंदेह अभिवादन के कपटपूर्ण शब्दों के तुरंत बाद लाबान ने अपने लापता देवताओं के बारे में पूछताछ की, जो मामले की असली जर है। याकूब कहते हैं, अरे यदि आप उन्हें ढूंढ सकें तो न केवल आपका उनमें स्वागत है बल्कि उन्हें लेने वाले को भी मार दिया जाएगा। ओह, राहेल अब गंभीर खतरे में है और वह यह जानती है, परंतु राहेल उन पर बैठकर उन्हें आपके पिता से छिपाती है कि जब वह उसके तंबू में ढूंढे तो उन्हें न पाए। वह अपने पिता से कहती है कि वह खरी नहीं हो रही है क्योंकि उसका मासिक चक्र चल रहा है, और उसके पिता यह मांग नहीं करते कि वह खरी हो जाए ताकि वह खोज सके, इसलिए नहीं कि वह उसकी वर्तमान स्थिति के कारण उसके प्रति संवेदनशील महसूस करता है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा करेगा उसके या जिस चीज पर भी वह बैठी है उसके संपर्क में आने से धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाना। एक महिला के अशुद्ध होने और अपने चक्र के दौरान उस अनुष्ठानिक अशुद्धता को प्रसारित करने की अवधारणा कुछ ऐसी है जिसके बारे में मूसा को भविष्य में 500 वर्षों में निर्देश दिया जाएगा। लेकिन यह एक कानून और परंपरा भी थी जो मूसा से बहुत पहले से ही लगभग सभी संस्कृतियों में अस्तित्व में थी, यहां तक कि याकूब से भी पहले। राहेल जानबूझकर अपनी अशुद्धता उन देवताओं तक पहुंचाएगी जिन पर वह बैठी थी। यह लाभान के लिए अकल्पनीय था।
इसलिए यह स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसी कोई संभावना भी थी। याकूब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहेल के पास वास्तव में वे मूर्तियां हैं। अब वह लाबान के आरोप पर वास्तव में क्रोधित है, विशेष रूप से गहन खोज के बाद भी जब वे मूर्तियां नहीं मिल पाई। याकूब के पास यह है। अब वह लाबान को समझाता है कि दो पत्नियों और कुछ भैरों के लिए 20 साल की दास्ता काफी होनी चाहिए, और वह लाबान से कहता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि लाबान उसे धोखा दे रहा था, सौदे की शर्तों को लगातार बदल रहा था। याकूब अब 90 वर्ष के हो चुके हैं। लाबान का उत्तर विशिष्ट लाबान जैसा है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा है। वह कभी भी इस विचार को स्वीकार करने में सक्षम नहीं था कि याकूब की संपत्ति, जो मुख्य रूप से बदरंग जानवरों की उच्च जन्मदर से भरी थी, जिसे लावण पहले स्थान पर नहीं चाहता था, वास्तव में उसके बराबर या उससे अधिक हो गई थी। हालांकि शालीनता का एक सरल प्रदर्शन करते हुए लाबान कहते हैं, आइए नफरत को खत्म करें, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपनी बेटियों का दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए मूल रूप से वे युद्ध न करने के लिए एक दूसरे के साथ एक संधि करते हैं, अपने समझौते के लिए एक वसीयतनामा और एक प्रकार की सीमा चिन्ह के रूप में पत्थरों का ढेर लगाते हैं, और समझौते पर मुहर लगाने के लिए उनके पास विशिष्ट वाचा का भोजन होता है। वैसे सीमा चिन्ह के रूप में खरे पत्थरों या पत्थर के ढेर या स्तंभों की स्थापना आज भी उपयोग में है। मुझे अपने पिता के साथ यूरेनियम की खोज याद है। जब मैं छोटा बच्चा था और हम कभी कभार पत्थरों के ढेर के पार दौड़ते थे, या कभी कभार मेरे पिता दावा चिन्ह के तौर पर अपना खुद का ढेर खड़ा कर देते थे। हालांकि यह अनुच्छेद वाचा की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है, लेकिन इसमें एक बलिदान का उल्लेख है जो निश्चित रूप से एक साफ जानवर रहा होगा जिसे काट दिया गया है, और टुकड़ों को याकूब और लाबान के साथ दो ढेरों में विभाजित किया गया है। सहमति के संकेत के रूप में टुकड़ों के बीच चलना, और कोई भी अनुबंध शपथ के बिना पूरा नहीं होता, जैसा कि हम पद 53 में पढ़ते हैं। इन सब के अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि प्रत्येक ने पत्थरों के ढेर सीमा चिन्हों का नाम उनकी मूल भाषा के अनुसार रखा। जेगरसाहू दुथा चाल्डियन का एक रूप है और गैली डिब्रानी है। उन दोनों का मतलब है गवाहों का ढेर। संधि की प्राथमिक शर्तें यह हैं कि याकूब लाबान की बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और वह कोई अन्य पत्नियां नहीं लेगा। याकूब ने इस समझौते का पालन किया। आइए उत्पत्ति अध्याय 32 पर चलते हैं। उत्पत्ति 32। आगे जो घटित होता है उसे उचित संदर्भ में रखने के लिए हमें याकूब के जीवन का अन्वेषण करते समय अधिक यथार्थवादी मानसिक चित्र बनाने की अनुमति देने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि याकूब अब एक बुजुर्ग व्यक्ति था। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस कालक्रम का पालन करते हैं। याकूब की उम्र 90 से कुछ कम से लेकर 100 साल के करीब तक थी। अब आपके संस्करण के आधार पर पहले 3 पदों को थोड़ा अलग ढंग से लेबल किया जा सकता है कि कब एक पद समाप्त होता है और दूसरा कब शुरू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाठ मूलतः वही रहता है। यह अध्याय लाबान द्वारा अपनी दो बेटियों राहेल और लिया और अपने सभी पोते पोतियों को अलविदा कहने से शुरू होता है। अधिकांश बाइबलें कहेंगी कि उसने अपने बेटों और बेटियों को छूमकर अलविदा कहा। उन दिनों पोते पोतियों को बेटा कहना आम शब्दावली थी, और यहां इसी का उल्लेख किया जा रहा है। तब हमें एक अजीब चीज का सामना करना पड़ता है। यह कहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे मिले, वे याकूब से मिले। अब निश्चित रूप से ईश्वर के स्वर्गदूत बिल्कुल वही हैं, क्योंकि मूल इब्रानी मैलाचिम एलोहीम है। एलोहीम ईश्वर के दूत, बहुवचन। लेकिन वास्तव में हमें इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी गई है। शायद यह एक आश्वासन था कि याकूब वादा किए गए देश में वापस आ गया था, या स्वर्गदूत एक अधिक दृश्यमान उपस्थिति थे जो पुष्टि करते थे कि ईश्वर वास्तव में उसके साथ थे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि याकूब की कनान भूमि छोड़ने की यात्रा पर याकूब को स्वर्गदूतों का सामना करना पड़ा,
बेतल में, इसलिए वापसी के लिए अपनी यात्रा पर उसे स्वर्गदूतों का भी सामना करना पड़ा।
किसी भी स्थिति में याकूब इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा, जिसका अर्थ है दो शिविर। अब पद 3 मुझे उस बिंदु पर जोर देने का अवसर देता है जो मैंने कुछ सप्ताह पहले कहा था, और वह शब्द मलाक, संदेशवाहक से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि सख्त इब्रानी में जब मलाक का प्रयोग स्वयं किया जाता है तो यह किसी प्रकार के संदेशवाहक को दर्शाता है, आमतौर पर एक मानव संदेशवाहक। लेकिन जब याहोवे या एलोहीम या ईश्वर की कोई अन्य उपाधि मलाक से जुड़ी होती है तो यह स्वर्गीय दूतों, आध्यात्मिक प्राणियों, स्वर्गदूतों की बात कर रहा है। पद 1 में हमारे पास स्वर्गीय दूत है, यहां पद 3 में हम देखते हैं कि याकूब ने याकूब के भाई एसाव को ढूंढने के लिए कुछ मलाकीम संदेशवाहक को आगे भेजा, और हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ये मानव दूत हैं, क्योंकि मलाकीम शब्द का उपयोग ईश्वर के लिए कोई इब्रानी शब्द जोरे बिना किया गया है।
याकूब के लिए उसने लाबान के साथ अपनी अप्रिय मुठभेड़ पूरी कर ली है, लेकिन अब उसे अपने भाई एसाव का सामना करना होगा, जिसने उसे आशीर्वाद से वंचित करने के लिए उसे मारने की शपथ ली है।
ठीक है, संदेशवाहक याकूब के पास लौट आए, लेकिन यह एक अच्छी खबर है, बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने वास्तव में एसाव को ढूंढ लिया और उसे याकूब का संदेश दिया। बुरी खबर यह है कि एसाव ने इससे अधिक कुछ भी संकेत नहीं दिया कि वह 400 आदमियों के साथ याकूब से मिलने आ रहा था। इससे याकूब अंदर तक डर गया। उसने कुछ समय पहले ही लाबान के क्रोध को महसूस किया था और उसे निपटा था, लेकिन उस मामले में अधिकार उसके पक्ष में था। हालांकि एसाव के साथ उसकी स्थिति कैसी है? एसाव को याकूब द्वारा किए गए गलत कार्यों का प्राप्तकर्ता था, उच्चतम स्तर का छल, जिसने एसाव से वह छीन लिया जो उन दोनों को लगता था कि एसाव का जन्मसिद्ध अधिकार था, और याकूब को आश्चर्य हुआ कि क्या समय ने उसे मारने की एसाव की इच्छा को शांत कर दिया था या नहीं। दूतों के प्रति एसाव की प्रतिक्रिया ने याकूब को आश्वस्त कर दिया होगा कि उसके सबसे बुरे डर का एहसास हो जाएगा, क्योंकि याकूब ने आदेश दिया था कि उसके परिवार को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा, और वह इस उम्मीद में एक के साथ रहेगा कि यदि एसाव ने याकूब से अपना बदला लिया तो शायद दूसरा समूह होगा, संभवतः अन्यत्र स्थित जीवित रहेगा। यह उनके समूह का 2 शिविरों में विभाजन था, जिससे इस स्थान का नाम परा महनैम, 2 शिविर। और निसंदेह अब जब उसके जीवन का सारा धोखा और अपराध बोध अचानक ऐसी स्थिति में प्रकट हो रहा था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, याकूब ईश्वर के सामने घुटनों पर गिर जाता है और प्रार्थना करता है। हमारे पास कितनी बार है हमने पाया कि हमारे लोग ईश्वर से आगे चल रहे हैं या पीछे रह रहे हैं, या सीधे तौर पर विद्रोह कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, और फिर परमेश्वर से हमें उन पापों के स्वाभाविक परिणामों से बचाने के लिए प्रार्थना करना। याकूब अब वही कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे समय और ईश्वर के साथ चलने के उसके अनुभव ने याकूब को बदल दिया है। वह स्वीकार करता है कि वह उस अद्भुत इनाम और सुरक्षा का हकदार नहीं है जो ईश्वर ने उसे प्रदान किया है।
जिस क्षेत्र में याकूब ने डेरा डाला था वह आज सुविख्यात है, इसे जब्बोक कहा जाता है, और यह जॉर्डन नदी के पूर्व में मृत सागर और गलील सागर के मध्य बिंदु पर स्थित है। जब्बोक के तट से जहां याकूब
खड़ा था वहां से यर्दन साफ दिखाई दे रहा था। यह खूबसूरत जगह है, हरा भरा और उपजाऊ। बाइबल हमें बताती है कि याकूब ने अपने दूतों के साथ अपने आगे कई झुंड भेजे, जिन्हें एसाव को पश्चाताप के उपहार के रूप में इन झुंडों की पेशकश करनी थी। उपहार की राशि बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें 550 जानवर शामिल थे। ये वास्तव में एक राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपयुक्त उपहार था। फिर याकूब ने अपने तत्काल परिवार को ले लिया, जब्बोक को पार किया और फिर उनसे अलग हो गया। जाहिर तौर पर अकेले एसाव का सामना करने की योजना बना रहा था।
यहीं पर हमारा सामना संपूर्ण बाइबल में सबसे अजीब घटनाओं में से एक से होता है। अचानक याकूब खुद को किसी आदमी के साथ कुश्ती करते हुए पाता है। इस शब्द मैन का इब्रानी शब्द ईश है, जिसका अर्थ पुरुष या पति या यहां तक कि एक शक्तिशाली या महान व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि यह आदमी याकूब को हार मांस का लग रहा था। हमें बताया गया है कि यह कुश्ती मैच पूरी रात चलता रहा और जब द मैन ने निष्कर्ष निकाला कि याकूब हार नहीं मानने वाला है, तो उसने याकूब के कूल्हे को एक स्पर्श से उखाड़ दिया।
तो यहां पद 25 में यह कहा गया है कि याकूब ने एक ईश, एक आदमी के साथ कुश्ती लड़ी, लेकिन पद 29 और 31 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह ईश्वरीय है, क्योंकि याकूब कहते हैं मैंने एलोहीम को आमने सामने देखा है। होशे 12 का 4 इस मुठभेड़ की बात करता है और स्पष्ट रूप से बताता है कि यह एक स्वर्गीय प्राणी था जिसके साथ याकूब ने लड़ाई की थी। तो यह संदर्भ पहले यह क्यों कहता है कि याकूब का प्रतिद्वंद्वी एक आदमी था और फिर यह क्यों कहा गया कि वह एलोहीम था? आइए एक पल के लिए स्वर्गदूतों के बारे में बात करें। ईसाई धर्म में इस बात को लेकर बहुत भ्रम है कि एक स्वर्गदूत क्या है, उसका रूप क्या दर्शाता है इत्यादि। समझने वाली पहली बात यह है कि अपने सबसे बुनियादी अर्थ में एक स्वर्गदूत सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दिव्य शब्द का वाहक है। एक स्वर्गदूत ईश्वर से एक दिव्य संदेश लाता है या वह ईश्वर से एक दिव्य आदेश का पालन करता है। आज हमारे पास अभिव्यक्ति है संदेश वाहक को मत मारो। मतलब देखो, जो व्यक्ति मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है वह मुझे अपने शब्दों या यहां तक कि अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ अपने से ऊंचे किसी व्यक्ति से मेरे लिए निर्देश लाने के लिए नियुक्त किया गया है। वह संदेश की सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल इसे सावधानी पूर्वक और सटीक रूप से वितरित करने के अपने कर्तव्य के अलावा। वह एक स्वर्गदूत है। फिर भी बाइबल इस शब्द का उपयोग कई संदर्भों में करेगी और मुझे लगता है अक्सर रूपक के रूप में। उदाहरण के लिए बाइबल में पैगंबरों और पुजारियों को कभी कभी प्रभु के स्वर्गदूत कहा जाता था या अधिक उपयुक्त रूप से दिव्य शब्द के दूत कहा जाता था। वास्तव में हाग्गय और मलाकी को धर्म ग्रंथों में इस रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे आमतौर पर प्रभु के स्वर्गदूत के रूप में अनुवादित किया जाता है। अब क्या हाग्गय और मलाकी दिव्य आध्यात्मिक प्राणी थे? नहीं, लेकिन ऐसे मनुष्य के रूप में जो केवल दूसरों को ईश्वर मानव जाति के लिए निर्देश दे रहे थे, वे निश्चित रूप से ईश्वर के दूत होने के योग्य हैं।
हम यह भी देखेंगे कि पवित्र धर्म ग्रंथ में दिव्य संदेश के वाहक, प्रभु का दूत और स्वयं यहोवे के बीच का अंतर धुंधला हो रहा है। हम इसे बर्निंग बुश प्रकरण में देखते हैं और हाजिरा के साथ, जिससे एक स्वर्गदूत ने बात की थी, लेकिन उसने सीधे ईश्वर को जवाब दिया, और कई अन्य दृश्यों में भी। लेकिन इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए या अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम यीशुओं के अनुयायी यह समझने की कोशिश में खुद को एक समान धुंधले अंतर का सामना करते हुए पाते हैं कि यीशुआ कौन है। वह एक इंसान है लेकिन वह ईश्वर भी है। हमें यहां याकूब के साथ वही सटीक परिदृश्य मिलता है जिसके साथ वह कुश्ती करता है। उसे बारी बारी से एक आदमी, एक ईश और ईश्वर एलोहीम कहा जाता है। इसके बारे में भी सोचें, क्या यीशु को शब्द भी नहीं कहा जाता है? या इसके सबसे पूर्ण बाइबल अर्थ में ईश्वर का दिव्य वचन। यीशु दिव्य शब्द का वाहक था एक स्वर्गदूत के रूप में। वह दिव्य शब्द ईश्वर था और वह एक मांस और रक्त मानव, एक आदमी भी था। अब यदि आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं तो कक्षा के बाद मुझसे मिलें ताकि मैं सबसे पहले व्यक्ति से मिल सकूं। तो ये सभी धुंधले भेद, जहां ईश्वर समाप्त करते हैं और स्वर्गदूत शुरू होते हैं, हम यीशुआ मनुष्य देवता स्वर्गदूत में पाते हैं। अब इस दिव्य दूत के कारण अशक्त हो चुके याकूब ने फिर भी यह कहते हुए हार नहीं मानी, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जाहिर है याकूब को पता चल गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है जिसके साथ वह जूझ रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में मैंने इस घटना पर कई उपदेश सुने हैं, मैंने यह भी सुना है कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ, यह सिर्फ एक परी कथा थी। मैंने सुना है कि इसे कई सदियों बाद पवित्र धर्म ग्रंथ में जो राग गया,
मैंने सुना है कि यह तो केवल रूपक है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है, कि यह बिल्कुल वास्तविक था। हमारे पास यहां एक ऐसा दृश्य है जो एक साथ शाब्दिक और प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक क्योंकि सभी विश्वासियों को ऐसे समय से गुजरना होगा जब हमें अपने जीवन पर नियंत्रण के लिए ईश्वर से संघर्ष करना होगा, और यदि हमें वास्तव में उस जीवन को समझना है जो ईश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो एक समय अवश्य आना चाहिए जब अपनी पसंद से पूर्ण समर्पण के माध्यम से हमें अपने टूटे फूटे इतिहास को पीछे छोड़ना होगा और हमारे जीवन के ईश्वर के रूप में ईश्वर के साथ एक नया इतिहास शुरू करना होगा। फिर भी अतीत के घाव हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उनसे निपट लेंगे। इससे भी अधिक, कभी कभी हमें अपने विद्रोही तरीकों को पीछे छोड़ने और नए जीवन में आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। याकूब के मामले में भी ऐसा ही था, क्योंकि अब उसे एक स्थायी विकलांगता विरासत में मिली है, क्योंकि वह एक विदेशी स्थान से वादा किए गए देश में पार कर गया था। मैं चाहता हूं कि ऐसा होता कि जब हम पहली बार अपने उद्धार को पहचानते हैं, या जब वर्षों तक बचाए जाने के बाद हम अंततः इसे जीने का फैसला करते हैं, तो हमारा सांसारिक अतीत हमारे पुराने स्वभाव की तरह मृत हो सकता है। अक्सर नेक इरादे वाले पादरी धर्मांतरित लोगों को बताते हैं कि उनकी स्लेट साफ कर दी गई है। वे उन्हें यह बताना भूल जाते हैं कि यद्यपि आध्यात्मिक रूप से हमें क्षमा कर दिया गया है, लेकिन इससे हमारे पाप स्वभाव के कारण होने वाले प्राकृतिक परिणाम समाप्त नहीं होते हैं। किसी न किसी तरह से हम अपना शेष जीवन अपनी मूर्खता पर पछताते हुए बिताएंगे। याकूब अपने शेष दिनों में लंगराकर चलेगा। लगभग 100 वर्षों तक ईश्वर के साथ संघर्ष करने का एक अपरिहार्य प्रमाण, जब तक कि अंततः उन्होंने शक्ति संतुलन हासिल करने का प्रयास करने के बजाय आत्मसमर्पण कर दिया।
याकूब ने पहले हमेशा अपने कौशल और चालाकी से, अक्सर धोखे के साथ मिलकर, पुरुषों के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन जब उसने पहचाना कि वह जो कुश्ती कर रहा था वह मांस और खून से कहीं अधिक था, वह जानता था कि वह हमेशा की तरह जीत नहीं सकता, और इसीलिए इसके बजाय उसने हार मान ली और धन्य होने के लिए कहा। और हम में से अधिकांश की तरह हम इस बिंदु पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम टूट न जाएं और अक्षम न हो जाएं। यदि हम याकूब के नाम का शाब्दिक योग लें तो इसका अर्थ है चालाक, स्वयं सहायक, प्रतिस्थापनकर्ता, और इसने याकूब के अब तक के जीवन को कितनी अच्छी तरह चित्रित किया है। लेकिन क्योंकि याकूब ने ईश्वर के सामने समर्पण कर दिया था, उसे एक नई नियति मिलनी थी, और यह उसके नए नाम में परिलक्षित होगा, इज़राइल, ईश्वर के साथ एक राजकुमार। यहां से बाइबल की कथा में हम एक नया याकूब देखते हैं। अब वह स्वयं पर, अपने शारीरिक तौर तरीकों पर भरोसा नहीं करता, वह ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहता है और उसे इज़राइल कहा जाएगा।
मैं क्राइस्ट टेस की प्रभु के पास आने की कहानी में अपने इश्माइली भाई को याद किए बिना नहीं रह सकता। इस बारे में कि कैसे एक फिलिस्तीनी के रूप में इस फैल के विरुद्ध लड़ते हुए वे कभी भी यहूदियों को हराते नहीं दिखे, वह आज रहने वाले औसत मुस्लिम अरब की तरह गहरी निराशा और क्रोध था जो इज़राइल पर अतार्किक नफरत की ओर ले जाता है, क्योंकि यह समझ से बाहर था कि 200 मिलियन अरब 6 मिलियन यहूदियों को नहीं हरा सकते थे। संयुक्त अरब सेनाएं जो इज़राइल के सामने बौनी थीं, बार बार पराजित हुईं और अरब जगत को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मसीह के पास आने के बाद टैस को अचानक एहसास हुआ कि वे इज़राइल को कभी क्यों नहीं हरा पाए। अंततः उन्हें समझ में आया कि अरब और मुसलमान जो सोचते थे कि उनके दुश्मन यहूदी थे, वास्तव में ईश्वर से लड़ रहा था, और जब हम ईश्वर से लड़ते हैं तो हमारी शर्तों पर जीत की कोई संभावना नहीं होती है। सबसे विडंबनापूर्ण तरीके से ईश्वर में हमारी जीत स्वयं की हार से होनी चाहिए।
याकूब के साथ इस दृश्य में ठीक यही हो रहा था, और यह हर उस विश्वासी के साथ हुआ है या होगा जो अंततः अपनी इच्छा को यहोवा को सौंप देता है। मैं इस अध्याय को उस चीज की ओर इंगित करके समाप्त करना चाहता हूं जो कुछ मायनों में तो स्पष्ट है, लेकिन अन्य मायनों में हम सीधे उससे आगे निकल जाते हैं। पद 33 ये कहते हुए शुरू होता है, यही कारण है कि इज़राइल के बच्चे आज तक हैं। और फिर ये बताते हैं कि जानवरों से कटिस्नायुशूल तंत्रिका, जिसे हमारी बाइबल में नस कहा जाता है, को क्यों हटा दिया जाता है और मांस के रूप में नहीं खाया जाता है। अवलोकन यह है कि सुधार किया गया है, घटित हुआ। इन अंशों के लेखक को पारंपरिक रूप से मूसा कहा जाता है। इसका कम से कम एक हिस्सा भविष्य के समय याकूब की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य से लिखा गया था और उस समय के दृष्टिकोण से, जब जानवरों से कटिस्नायुशूल तंत्रिका को खाने या बलिदान करने के लिए एक परंपरा विकसित की गई थी, इस दिन के सम्मान में जब याकूब का कूल्हा विस्थापित हो गया था क्योंकि उसे एक दिया गया था, नया नाम जो उसकी नई प्रकृति इज़राइल का वर्णन करता है।
इसके अलावा एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसी समय उत्पत्ति 32 पद 29 में इज़राइल राष्ट्र की स्थापना हुई है।